الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو سورۃ الانبیاء کی ان آیات کی تفسیر ہم نے آج پڑھنی ہے. پیج نمبر 193 ہے. جلد نمبر 6 کی ہے. چھ کا تو اس سے پیچھے کی جو آیات تھیں ان کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا تھا پچھلی کلاس میں. ساتھ ساتھ تھوڑی بہت تشریح وغیرہ بھی کرتے جا رہے تھے اور اب اس کے بعد اصل میں خلاصہ تفسیر وغیرہ اس کتاب سے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے تھے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے اور اپنے والد سے کہا کہ تم کیا ان بتوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا، تمہارے آباؤ اجداد بھی کھلی گمراہی میں تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی گمراہی جو ہے وہ ثابت تھی. ضروری نہیں ہے کہ باپ دادا جو ہے وہ گمراہ ہوں. ٹھیک ہے، ضروری. جی ہاں، مجھے پتا ہے، ابھی پڑھنا ہے ترجمہ باقی. تو ضروری نہیں ہے کہ باپ دادا جو ہے وہ گمراہ ہوں، لیکن اگر دلائل سے ثابت ہو جائے کہ باپ دادا غلط راستے کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ان کو صحیح نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ باپ دادا ہیں. اس وجہ سے ان کو صحیح نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ وہ باپ دادا ہیں. ٹھیک ہے نا، امی ہیں تو غلط نہیں ہو سکتی، ابو ہیں تو غلط نہیں ہو سکتے، یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اگر وہ شریعت، سنت اور جو حقائق ہیں، جو پروویبل فیکٹس ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے مطابق اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو پھر وہ غلط ہی ہیں. ٹھیک ہے نا، ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا کہ ان کی ہر بات کو صحیح کہنا یہ ان کا حق ہے، بلکہ ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ ان کے ساتھ تمیز کا معاملہ رکھنا، احسان کا معاملہ رکھنا. ٹھیک ہے نا، ان کو جھڑکنا نہیں، ان کے سامنے جو ہے وہ آواز اونچی نہ کرنا، ان کو جو ہے وہ جھڑک یعنی بدتمیزی نہ کرنا. ٹھیک ہے نا، ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا دین کہتا ہے. ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ ان کی ہر بات کو صحیح بھی ماننا، اگر وہ غلط بات ہے تو اس کو صحیح ماننا، یہ نہیں ہے باپ دادا کے اور ماں باپ کے حقوق میں سے. ٹھیک ہے نا، یہ غلط فہمی ہے جو کہ ہمیں لگ گئی ہے بس، کہ نہیں جی جب تک ان کی بات کو صحیح نہیں مانیں گے اس وقت تک ان کا حق ادا نہیں ہوگا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی طور پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کے ساتھ، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بہت بڑے بڑے مسائل ہیں اور جن کی وجہ سے یعنی نسلیں برباد ہو گئی ہیں، ایمان ختم ہو گئے ہیں، کیا کیا کچھ نہیں ہو گیا، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے ان تفصیلات کا، کیونکہ ہم ڈیل نہیں کرتے ان چیزوں سے. ٹھیک ہے نا، جو علماء ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، ان کو یہ چیزیں ڈیل کرنی پڑتی ہیں، دیکھنی پڑتی ہیں کہ باپ دادا کی، امی ابو کی مان کر کے پھر کیا بنا، اس بچے کا کیا بنا، اس بچی کا کیا بنا، اس بچی کے آگے اولاد کا کیا بنا. ٹھیک ہے نا، یہ ہمیں تو نہیں نظر آتا نا، ہمیں تو اوپر اوپر کی چیزیں، بڑا سب ٹھیک ٹھاک ہے، سب بڑے مزے میں ہیں، ہلا گلا ہو رہا ہے، تفریح ہو رہی ہے، دعوتیں ہو رہی ہیں، پارٹیز ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ہمیں تو بس یہ سب کچھ نظر آتا ہے نا. تو علماء کو اس سے زیادہ گہری تحقیق ہوتی ہے. لوگ آ کے مسائل بتاتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں یہ ہو گیا، میں نے یہ کر دیا، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، میرا بچہ جو ہے وہ کافر ہو گیا، میری بچی جو ہے وہ گھر سے بھاگ گئی، और उसने जो है वो हिंदू से शादी कर ली, इसने जो है वो ईसाई से शादी कर ली, उसने जो है वो अपना दीन ही बदल दिया, उसने यानी खुदकुशी कर ली, है ना, बच्ची ने खुदकुशी कर ली, बेटे ने जो है वो यानी जहर वाली दवाएं खानी, ये सारी बातें लोग आपको तो नहीं आके बताएंगे ना, राइट, आपको तो नहीं आके बताएंगे, आपको तो ज्यादा से ज्यादा या तो अपने घर का पता होगा, ज्यादा से ज्यादा, वो भी अक्सर लोगों को नजर नहीं आता कि उनके घर में क्या हो रहा है, अंधे बन के बैठे हुए होते हैं, आंखें बंद करके बैठे होते हैं कि उनके घर में क्या हो रहा है, तो लोगों को तो अपने घर का पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, अपने खानदान का पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि बिल्कुल अंधे बहरे गोरे गूंगे होकर के बैठे हुए होते हैं, अपने टीवी देखने में लगे हुए हैं, क्रिकेट का मैच देखने में लगे हुए हैं, तो उनको कैसे पता लगेगा कि हकीकत क्या है। उलमा का मामला ऐसा नहीं होता, उलमा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे उलमा जो है वो क्रिकेट के मैच में अपनी जिंदगी जाया नहीं करते, वो टीवी के प्रोग्राम और ड्रामे नहीं देख रहे होते, उनके पास एक हसास दिल होता है और आंखों देखने वाली आंखें होती हैं, सुनने वाले कान होते हैं और सोचने वाला दिमाग होता है, वो अपनी अपने जहन को जो है ना वो फिक्र के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से मुआशरे के अंदर जो कुछ हो रहा होता है ना वो उससे वाकिफ होते हैं, ये उनका उनकी फील्ड है, ये उनका एरिया है ये, ठीक है ना, तो इस वजह से उलमा जो है ना उनकी बात मान करके चलना होता है, उनसे डायरेक्शंस लेने होते हैं। हाँ, अगर वो बताएं कि जी आपके वालिद भी आपको अच्छी नसीहत कर रहे हैं, आपको सही बात कह रहे हैं, तो फिर वालिद बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, उनकी बात माननी चाहिए, उनके पास तजुर्बा भी है, उनके पास इखलास भी है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन इस वजह से कोई थोड़ी कि भाई अब्बू हैं इस वजह से सही बात कर रहे हैं, ये नहीं है ये हमारे दीन के अंदर, ठीक है ना, अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे ये आपकी मर्जी है, हमें तो बात बतानी है आपको, ठीक है ना, क्योंकि हमारे सामने भी ऐसे हालात बहुत सारे खुले हुए हैं कि जहां पर अम्मी अब्बू ने बेड़ा गर्क करके रख दिया है, पूरे के पूरे खानदान का, आगे की नस्लों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, ठीक है, तो हम नहीं चुप रह सकते इन बातों के ऊपर। आगे चले, आगे फरमाते हैं, कालू, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सारा मामला हो गया और उन्होंने बुतों को तोड़ दिया, और उसके बाद फिर उन काफिरों ने फैसला कर लिया कि जी इनको तो जो है ना आग के अंदर फेंकना है, तो फिर इन लोगों ने आपस में कहा कि हर्रिकूहू, जला दो, जला डालो इसको, ठीक है ना, जला डालो, हर हर जो है वो आग को कहते हैं, ठीक है ना, हार, रियाज के अंदर एक जगह है उसको कहते हैं हारा, हारा, ठीक है, हारा क्यों कहते हैं उसको, उस जगह का असल में नाम हारा नहीं है, असल में तो उसका नाम हय्युल उलिया है या हय्युल मुरब्बा है, ठीक है ना, हारा उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर रहते हैं सारे के सारे इंडियंस और पाकिस्तानी, ठीक है ना, इंडियन पाकिस्तानी जो है वो उनके रेस्टोरेंट्स भी वहां पे बहुत सारे हैं, तो वहां पे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ना इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स के अंदर जो है ना वो आग वाली चीजें मिलती हैं खाने के लिए, क्या मतलब, ये नहीं क्या अरबी लोग जो है वो आग पे खाना नहीं पकाते, अरबी भी आग पे खाना पकाते हैं, इंडियन पाकिस्तानी भी आग पे खाना पकाते हैं, लेकिन इंडियन पाकिस्तानी का जो खाना होता है ना उसके अंदर आग, उसके अंदर भी आग होती है, सिर्फ नीचे आग नहीं लगी हुई होती, अंदर भी आग होती है, इस वजह से जब अरब लोग आके इनका खाना खाते हैं ना हारा में जाकर के, तो उनके पेट पेट में और सीने में आग लग जाती है, ठीक है ना, गरम मसाले की वजह से, गरम मसाले की वजह से, भारत, लफ्ज भारत, इस मुल्क को भारत क्यों कहते हैं, क्योंकि भारत, ये जो भारत का जो लफ्ज है ना ये दरअसल अरबी का लफ्ज है, और ये जो है वो गरम मसाले के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो वो वास्को डे गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस यूरोप से चले थे, वो इंडिया आने के लिए चले थे, क्यों इंडिया आना चाहते थे वो, क्योंकि यहाँ से जो है ना वो गरम मसाले लेकर के यूरोप में जाएंगे, यूरोप में गरम मसाले नहीं होते थे, ठीक है ना, तो इंडिया में गरम मसाले, अब वो जाहिर से जब होते भी हैं तो वो खाने में भी डालते हैं, और खाने में जब डालते हैं तो फिर उससे मिर्च लगती है, अब ये अरबी लोग तो इससे वाकिफ नहीं है, तो उस वजह से उन्होंने ना उस जगह का नाम रख दिया हारा, हार यानी आग, ठीक है, तो इन लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए यही आपस में मशवरा किया कि इनको आग में जला डालो, हर्रिकूहू वंसुरू आलिहतकुम, और अपने खुदाओं की मदद करो, ठीक है ना, अपने खुदाओं की मदद करो, इनके खुदाओं को जो है वो मदद की जरूरत थी, ठीक है ना, ये खुद से तो अपनी मदद कर नहीं सकते थे, तो इनके खुदाओं को मदद की जरूरत थी, इनकुन तुम फाइलिन, ठीक है ना, अगर तुम कुछ करने के काबिल हो, फाइल, फाइल कहते हैं करने वाला, अगर तुम कुछ करने के काबिल हो ना तो अपने खुदाओं की मदद करो, ठीक है ना, अब यहाँ पर एक सवाल, इल्मी सवाल, ठीक है, अगर कोई आप में से आलिमात भी हैं तो एक तालिब इल्माना सवाल जहन में आना चाहिए कि जी खुदा की मदद करने का यहाँ पे इन लोगों ने لفظ استعمال کیا ہے تو ایک جگہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ کونو انصار اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے انصار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ. تو وہاں پہ کیا، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی مدد کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب اگر آپ خالی یہ کہیں کہ جی ان کے خداؤں کو مدد کی ضرورت تھی، تو بھائی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیونکہ بات سمجھانے کے لیے علمی بات ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے ایسے الفاظ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں کہ جی وہاں پر بھی تو اللہ کی مدد کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے کون سی ایسی غلط بات کہہ دی؟ خداؤں کی مدد کرو، اللہ کی مدد کرو، اللہ بھی خدا ہے، اللہ ہی خدا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم تو کہتے ہیں اللہ ہی خدا ہے، اور یہی حقیقت بھی ہے، اور یہ لوگ کہتے تھے بہت سارے خدا ہیں، لیکن مدد کی ان کے خداؤں کی بھی ضرورت، اور وہاں پہ بھی کونو انصار اللہ، اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ. تو کیا دونوں ہی غلط باتیں ہیں؟ نعوذ باللہ. حالانکہ وہ قرآن کی بات ہے، اور یہ جو ہے وہ مشرکین کی بات کو نقل کیا جا رہا ہے. تو اس میں غلط کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، غلط یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے نبی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور وہ جو بات کر رہے ہیں کونو انصار اللہ، ٹھیک ہے نا، وہ جو بات کر رہے ہیں وہ وحی کے، اللہ کی وحی کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں، وہ اپنی عقل کی بنیاد پر بات نہیں کر رہے، وہ اپنی عقل کی بنیاد پر بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا. کہ ہاں اللہ تو، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی مدد کرنے والا یہاں پر ہے نہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ اللہ کی مدد کرنی چاہیے ہم سب کو مل کر کے، اور اس وجہ سے نا پھر تم لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی مددگار بن جاؤ. وہ عقلی طور پر بات نہیں کر رہے، وہ وحی کے طور، وحی کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں، اور وحی کی بنیاد پر جو بات ہوتی ہے تو پھر اس کو پھر سمجھا جائے گا کہ اصل میں اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے نا. کونو انصار اللہ کا مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مدد کی ضرورت ہے، بلکہ مدد یہاں پر اسباب کے درجے میں بات ہو رہی ہے، صرف اسباب کے درجے میں، کہ تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو، تم اللہ تعالیٰ کے نبی کی مدد کرو، اسباب کے درجے میں، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے بغیر سارے کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے بغیر سارے کام کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تم اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دے دیں گے، تمہارا فائدہ ہو جائے گا، تمہارا فائدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہ وحی کی بات ہے. یہاں پر جو یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کے پاس کوئی وحی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی وحی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی نبی نہیں ہے کہ جس کی بات سن کر کے، جس کی بات مان کر کے یہ بات کر رہے ہیں. یہ اپنی عقل سے بات کر رہے ہیں، یہ محض اپنی عقل سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جو بات عقل سے ہوتی ہے نا، اس کے اندر جو ہے وہ غلطیاں ہوتی ہیں، کمیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے ان کا یہ کہنا کہ اپنے خداؤں کی مدد کرو، یہ چونکہ خالصتاً عقل کی بنیاد پر ہے، اس وجہ سے یہ غلط ہے. اور وہاں پر جو عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ عقل کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ وحی کی بنیاد پر ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں. تو اب اس وحی کے جو الفاظ ہیں ان کو پھر ہم، جیسے پچھلی کلاس میں بھی شاید بات ہوئی تھی نا، تاویل کریں گے، اس کو ایکسپلین کریں گے، وی ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ کہ کیا مراد ہے ان کی اصل میں. اللہ تعالیٰ کو مدد کی ضرورت تو نہیں ہے، تو پھر وہ کیوں، کس مدد کی بات کر رہے ہیں وہ وہاں پر، ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کی ایکسپلینیشن موجود ہے، پورے دین کے اندر یہ بات موجود ہے. اور پچھلے ہفتے تو ہم نے جمعے کے دن بات ہی اس ٹاپک کے اوپر کری ہے، اسباب اختیار کرنا، اسباب اختیار کرنا، مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اصل میں تو اسی نے سب کچھ کرنا ہے، ہم نے تو اپنے فائدے کے لیے اسباب اختیار کرنا ہے، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ اپنے خداؤں کی مدد کرو، اور کر لو جو کرنا ہے، کر جاؤ جو کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا. ان کو جلا دو، اس کو، ابراہیم علیہ السلام کو. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا جواب، کہ جب ان لوگوں نے سارا وہ تفصیل آگے آ رہی ہے کہ جو کر کر آ کے انہوں نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا، ٹھیک ہے نا، یعنی روانہ کر دیا ان کو ہوا پہ، ہوا کے دوش کے حوالے کر دیا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، قلنا، ہم نے کہا، ٹھیک ہے نا. اب یہ ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، میں نے کہا، لیکن جو بڑی ذات ہوتی ہے، سب سے بڑی ذات ہوتی ہے نا، وہ یعنی اس کانٹیکسٹ میں جو سب سے بڑی ذات ہوتی ہے نا، وہ اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کرتی ہے، ٹھیک ہے. मिसाल के तौर पर जब कई बुजुर्ग बैठे हुए हों, एक उम्र के उलमा हैं, मशायख हैं बैठे हुए, तो वहां पर जो वो लोग आपस में बात करेंगे ना, तो वो कहेंगे मैंने ये कहा, मैंने वो कहा, एक बुजुर्ग कहेंगे मैंने ये कहा, दूसरे बुजुर्ग कहेंगे हमने ये करा, नहीं वो नहीं कहेंगे हमने, वो कहेंगे मैंने ये किया, वो कहेंगे मैंने ये कहा, ठीक है ना। तो जब एक लेवल के लोग होते हैं ना, वो एक दूसरे के, वो अपने लिए मैं का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब एक बुजुर्ग है और बाकी सारे जो हैं वो शागिर्द हैं, कम दर्जे के लोग हैं, ठीक है ना, तो अब ये जो बुजुर्ग है ना, अकेले बुजुर्ग, ये अपने लिए मैं का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि ये अपने लिए हम का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। माँ बाप भी ऐसे ही करते हैं हमारे मुआशरे में, हमारे यहाँ जो अल्हम्दुलिल्लाह पीछे से एक अदब और तहजीब वाला मामला चला आ रहा है ना, तो यहाँ पर माँ बाप अपने लिए हम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मैं का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, अमरीका चले जाएं तो वहां पर बाप भी अपने आप को मैं कह रहा होता है, आई, ठीक है ना, और माँ भी अपने आप को आई कह रही होती है, और बेटा भी जो है वो उनको यू ही कह रहा होता है। मतलब यू तो खैर अंग्रेजी के अंदर यू प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वहां पर फर्स्ट नेम बेसिस के ऊपर, क्योंकि अदब अदब से उन लोगों का कोई वास्ता अब नहीं रहा। पहले तो था उनका वास्ता भी अदब के साथ, लेकिन अब यहूदियों ने आकर के ना सब कुछ खत्म करवा दिया उनके यहाँ, ठीक है, ताकि यहूदियों का काम आसान हो जाए। तो अदब वदब भी खत्म हो गया उनके मुआशरे से, हया वगैरह सब कुछ रुखसत हो गई उनके मुआशरे से, ठीक है ना। ये सारा काम जो है वो यहूदियों ने आकर के किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ अभी भी अदब है, इस वजह से माँ बाप जो है वो अपने लिए हम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल, तो एक बड़ा जो होता है ना, वो अपने लिए हम का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और इसके अंदर एक शान होती है, एक बड़ाई होती है, बुजुर्गी होती है, ठीक है। तो अल्लाह ताला भी अपने लिए हम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, नहनु, ठीक है ना, नहनु नरज़ुकुकुम, नहनु का मतलब ये है हम, ठीक है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, बेशक हमने नाजिल किया इस जिक्र को, वन्ना लहू लहाफिज़ून, राइट, तो हम जो है वो इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला अपने लिए हम का सीगा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इलाहुकुम इलाहु वाहिद, ठीक है ना, ये भी फरमा बता देते हैं, ये नहीं कि कंफ्यूजन ही रह जाए कि हाँ हम जो क्या मतलब बहुत सारे खुदा हैं इसका मतलब है, नहीं, व इलाहुकुम इलाहु वाहिद, तुम्हारा जो इलाह है ना, माबूद है, वो एक वाहिद माबूद है, एक है, वो एक से ज्यादा नहीं है, प्लूरल का सीगा नहीं है वहां पर, यानी ये नहीं कि प्लूरल सीगा का मतलब ये मत समझ लेना कि दो तीन खुदा हैं, ठीक है। अच्छा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने कहा या नारु, ए नार, ए आग, कूनी, हो जाओ, क्योंकि आग का जो लफ्ज है ये अरबी जुबान के अंदर मुअन्नस इस्तेमाल होता है, फीमेल, ठीक है, तो कूनी, तुम हो जाओ, बर्दन, ठंडी, बर्द ठंडक को कहते हैं, वह सलामन, और सलामती, ठीक है ना, यानी बहुत ज्यादा ठंडी ना हो जाओ कि पता चला ठंड की वजह से भी तो बंदा मर जाता है, ठीक है ना, बल्कि जहन्नुम के अजाबों में से एक अजाब जो है ना वो है ठंडक का अजाब, ठंडक का अजाब, ठीक है, ये जहन्नुम के अजाबों में, सिर्फ जहन्नुम में आग वाला अजाब नहीं होगा, ठंडक वाला भी अजाब होगा। अभी शिकागो शहर जो है ना, वहां पर 4-5 साल पहले इतनी ज्यादा ठंडक हुई, इतनी ज्यादा ठंडक हुई कि लोग ठंडक से, यानी वो लोग जो कि हर साल बिलो 30 डिग्रीज टेम्परेचर होता है विंड चिल के साथ शिकागो के अंदर, -10 तो नॉर्मल है ठंडक के मौसम में, लेकिन उस साल में -50 डिग्रीज टेम्परेचर हुआ और लोग बहुत बड़ी तादाद में मरे, पूरी लेक जो है ना फ्रीज हो गई थी। तो वहां पर फिर लोगों ने, जो जो मुसलमान है, जो हदीस वदीस बहुत ज्यादा माशाल्लाह पढ़ी हुई है लोगों ने ना, तो उन्होंने बताया हदीस में बाकायदा जहन्नुम के अजाबों में से एक अजाब है ठंडक वाला था, तो इस हदीस ने भी वहीं पे पढ़ा था इस बात को। तो इस आग को कहा कि बर्दन भी हो जाओ लेकिन सलामती वाली ठंडक, ठीक है, अला इब्राहिम, मेरे खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर। फिर आगे फरमाते हैं, वह अरादू भी कैदन, इन लोगों ने इरादा किया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ, ठीक है, अरादू, इन लोगों ने इरादा किया था भी इब्राहिम के माँ के, इब्राहिम के साथ कैदन, ठीक है ना, एक एक बुरा इरादा, बड़ी बुरी तदबीर करी। वैसे तो कैद का मतलब जो होता है तदबीर करना होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो बुरे मानी में कि बुरी बुरी तदबीर उन्होंने करी थी, बुरा इरादा किया था। फजअलनाहुम अलअखसरीन, बस हमने कर दिया उनको खसारा पाने वालों में से, यानी दे फेल्ड इन देयर एफर्ट्स, अपनी तदबीरों के अंदर वो खसारा, नुकसान हो गया उनको, ठीक है, लॉस्ट। वनज्जैनाहु, और हमने निजात दे दी उसको यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, वलूतन, और लूत अलैहिस्सलाम जो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, उनका एक भाई भी था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो कि मुसलमान नहीं हुआ, भतीजा मुसलमान हो गया जो कि लूत अलैहिस्सलाम थे। बीवी हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो भी मुसलमान हो गए, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला अक्सर जगहों पर बीवी का तस्करा जो है वो शौहर के जिमन में अलग से तस्करा नहीं होता, अगरचे के अलग से कुछ मुकामात पर किया भी तस्करा अल्लाह ताला ने, लेकिन ज्यादातर जो है वो खवातीन का तस्करा मर्दों के तहत अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है भाई, हमारे खालिक का कोई एतराज कर सकता है? हाँ, जिसको अल्लाह ताला के साथ मसला होता है वो एतराज करता है, लेकिन जो मानने वाले होते हैं वो ऐसे एतराज नहीं करते। तो हमने इब्राहिम को निजात दे दी और लूत को निजात दे दी। अच्छा, निजात दे करके क्या मतलब, यहां से निकाला और एक और जगह पहुंचा दिया, इलन अर्द, जमीन की तरफ, अल्लती जो के थी, जो यानी वो जो, अल्लती वो जो, बारकना फीहा, हमने बरकत दी उसके अंदर, लिल आलमीन तमाम आलमीन के लिए, तमाम आलम के लिए, तमाम यानी जो मखलूकात मौजूद है अल्लाह ताला की दुनिया के अंदर, राइट, उन सब के लिए हमने इस जमीन के अंदर बरकत डाली है, जिस जमीन की तरफ हमने इब्राहिम और लूत को निजात दी, यानी उनके दिल में डाला या वही नाजिल फरमाई उनके ऊपर कि अब तुम यहां से निकल करके मुल्के शाम की तरफ चले जाओ, ठीक है ना, और मुल्के शाम के अंदर बरकतें अल्लाह ताला ने रखी हैं। वहबना लहु इसहाक, और हमने हिबा कर दिया, हमने हिबा कर दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसहाक, यानी बेटा अता फरमाया, ठीक है ना, हजरत सारा रज़ी अल्लाह अन्हा के बतन से इसहाक अलैहिस्सलाम अता फरमाए। व याकूब नाफिला, और याकूब नाफिलतन, नफली तौर पर याकूब अता फरमाए। क्या मतलब भाई, तर्जुमा तो यहां पर बनेगा पोता, ठीक है, लेकिन पोते के लिए नफिल का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि उमूमी तौर पर एक इंसान अपने लिए औलाद मांगता है, तो वो औलाद जो होती है ना उसकी डायरेक्ट औलाद ही मुराद होती है, ठीक है। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक्स्ट्रा नवाजा, जो उन्होंने औलाद की दुआएं करी थी, पहले तो इस्माइल अलैहिस्सलाम अता फरमाए, फिर 1400 साल के बाद फिर इसहाक अलैहिस्सलाम अता फरमाए, ठीक है ना, तो औलाद की बाप दुआ करता है, पोते की दुआ तो नहीं करता ना, ठीक है ना, कोई भी पोते की दुआ नहीं करता, सब औलाद, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी औलाद की दुआ करी थी, ठीक है ना, क्या थी वो हबली हबली मिन सॉलिहीन, क्या क्या थी वो दुआ, मुझे याद नहीं आ रही। तो लेकिन अल्लाह ताला ने उनको जो है ना वो पोता भी अता किया, ऐसा पोता अता किया जो कि नबी थे और नबियों की पूरी यानी सीरीज चलाने वाले थे, याकूब अलैहिस्सलाम, जिनका दूसरा नाम इसराइल भी था, तो उनसे फिर बनी इसराइल की पूरी नस्ल चली है, जिसके अंदर कम अज कम 10,000 अंबिया पैदा की, कम अज कम 10,000 अंबिया, ठीक है। तो इस वजह से याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र जो है ना वो नफली तौर पर, क्योंकि नफिल वो चीज होती है, वो इबादत होती है जो आपके ऊपर फर्ज नहीं होती, फर्ज तो वो होती है ना जो आपके ऊपर आपके जिम्मे लगाई गई है, ठीक है ना, और नफिल वो होती है जो कि आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दे देते हैं, एक्स्ट्रा कर देते हैं, ठीक है। तो याकूब नाफिला, वकुल्लन जअलना सालिहीन, और हमने कर दिया इन सब के सब को सालिहीन, नेकबख्त कर दिया कुल्लन, ठीक है, यानी याकूब अलैहिस्सलाम और उनके जो आगे फिर पुश्त के अंदर जो नेक सालिहीन लोग बने, अंबिया अलैहिस्सलाम, ठीक है ना, तो हमने उनको सालिहीन बना दिया, नेकबख्त, ठीक है ना। अब नेकबख्त जो है जो उनमें वाकई नेक बने, गुनाहों से बचने वाले बने, वो तो आखिरत में भी नेकबख्त हो गए, ठीक है, और बाकी जो लोग थे ना वो जो कि बनी इसराइल में हर किस्म के लोग थे, ठीक है ना, यानी अंबिया के दुश्मन भी बने, अंबिया के जो है वो धोखे देने वाले भी बने, और अंबिया की बात ना मानने वाले भी बने, ठीक है ना, तो उनको जो है वो हमने यानी दुनियावी एतबार से एक अच्छा मुकाम दे दिया, क्योंकि उस वक्त तक जो है ना जब तक इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की के साथ दुश्मनी नहीं करी थी, उस वक्त तक ये बड़े अच्छे हालात में रहते थे, ठीक है ना, बुराई करते थे, पिटते थे, फिर उसके बाद जो है वो नेक बन जाते थे, तौबा कर लेते थे, ठीक है ना, तौबा कर लेते थे फिर अल्लाह ताला उनको दुनिया दुनिया और आखरत की जो है वो खूबियां अता फरमा देते थे, ठीक है ना, बनी वो बैतुल मुकद्दस उनको वापस मिल जाता था, फिर उसके बाद बुरी हरकतें करते थे, फिर पिटाई होती थी, फिर बैतुल मुकद्दस तौबा करके वापस ले लेते थे, ठीक है ना। फिर इनकी जो जो बदबख्ती के ऊपर जो जो नेल ठुकी है ना, वो ठुकी है ईसा अलैहि सलाम के बाद से, ठीक है। फिर जो है ना ये यानी फिर ऐसी इनकी बदबख्ती है जो कि आज तक चली आ रही है, चंद दिन की बात है इनके सारे तमाशे खत्म होने वाले हैं। बहरहाल तो कुल्लन जालना सालिहीन, हमने इन सबको नेकबख्त बनाया, यानी इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम और उनके नस्ल के अंदर जो अंबिया हमने भेजे और सालिहीन नेक नेक लोग जो हमने भेजे। वजअलनाहुम अइम्मतैन यहदून बि अम्रिना, और उनको किया हमने अइम्मा, ठीक है ना, इमाम, इमाम की जमा अइम्मा, ठीक है। तो हमने इन लोगों को इमाम बना दिया जो कि यहदून बि अम्रिना, हमारे हुक्म से हिदायत का रास्ता दिखलाते थे लोगों को, लोगों को हिदायत देते थे हमारे हमारे हुक्म से, ठीक है ना। वही बात है कि हिदायत तो असल में अल्लाह ताला देते हैं, मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह ताला है, हिदायत के भी जो मुसब्बिब हैं वो अल्लाह है, हिदायत का सोर्स अल्लाह है। तो फिर नबी क्या करते हैं, नबी जो है वो अल्लाह के हुक्म से हिदायत पहुंचाने का काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो नबी जो है वो सबब होते हैं, हिदायत का सबब होते हैं, ठीक है ना, और अल्लाह ताला हिदायत का मंबा होते हैं, मावा होते हैं, सोर्स होते हैं हिदायत का, ठीक है। तो ये लोग जो है ना वो हमारे हुक्म से हिदायत देने का, हिदायत पहुंचाने का, रहनुमाई करने का काम करते थे। वह अवहैना इलैहिम, और हमने वही करी उनकी तरफ, फ़िअल अल-खैरात नेकियों के कामों की, खैरात का लफ्ज जो है वो नेकियों के काम के लिए इस्तेमाल होता है, सालेहात खैरात, ठीक है। तो नेकी के कामों की हमने उनकी उनकी तरफ वही करी, यानी उनको बताया कि भाई नेकी के काम क्या क्या होते हैं, तुम्हें क्या करने चाहिए, तुम्हें अपनी कौम को क्या काम बताने चाहिए, ये सब वही के जरिए से अल्लाह ताला अपने पैगंबरों को बताते थे और पैगंबर आगे लोगों को बताते थे। वह इकाम सलाती, और नमाज को कायम, अच्छा फेलुल खरात में इकाम सलात तो शामिल है, ठीक है ना, तो फिर अलग से इकाम सलात का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि नमाज की एक ऐसी सिग्निफिकेंस है, एक ऐसी इंपॉर्टेंस है कि जो जो के यानी अलग से बयान करने की भी अल्लाह ताला ने उसको उसकी यानी जरूरत समझी इंसानों को, ठीक है, कि इंसानों को नमाज जो है ना वो इतनी अहम इबादत है कि खैरात में से निकाल करके इसको हम अलग से भी बयान करेंगे। वह ईता जक़ा, और ईता जक़ात, और फिर नमाज के बाद जो है वो आपको पता है जक़ात की बारी आती है, ठीक है ना। नमाज जो है ये अल्लाह ताला का हक होता है, अल्लाह ताला के साथ बंदे का डायरेक्ट, और जकात जो है वो बंदों के साथ कि अपने माल में से जो अल्लाह ताला ने दिया होता है उसमें से निकाल करके बंदों में बांटना, ठीक है। तो इस वजह से अल्लाह के बाद फिर बंदों के हुकूक आते हैं, हुकूक अलबाद उनको कहते हैं। वकानू लना आबिदीन, और वो लोग थे हमारी बंदगी में लगे हुए, आबिद बंदगी करने वाले, यानी हमारी अताअत करते थे, ठीक है, वो लोग हमारी अताअत करते थे, ठीक है। अच्छा, इन्होंने डायरेक्ट मैसेज में एक सवाल लिखा है कि फिरौन की तौबा क्यों नहीं कबूल हुई, फिरौन की तौबा क्यों नहीं कबूल हुई, इसकी वजह यह है कि तौबा के लिए ना अल्लाह ताला ने एक वक्त रखा है, ठीक है ना, जब वो वक्त गुजर जाता है ना तो उसके बाद तौबा की कबूलियत खत्म हो जाती है, ठीक है ना। अब ये वक्त कौन सा वक्त है कि जिसमें तौबा की कबूलियत होती है जब वो की जाए, और वो कौन सा वक्त है कि जिसके अंदर तौबा की कबूलियत नहीं होती, ठीक है ना। अब आपको पता ही होगा, आम जो जो अंडरस्टैंडिंग है वो ऐसी ही है, और वो सही सही अंडरस्टैंडिंग है कि जी मौत का जो जो मंजर शुरू हो जाता है ना, जब वो गरगरा शुरू हो जाता है, जान निकलनी शुरू हो जाती है, तो उस वक्त जो है ना वो तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाता है, ठीक है ना, तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाता है, ठीक है ना। ये जनरल उसूल है, हर एक के साथ ऐसा ही है, हर इंसान के साथ, ठीक है ना, कि जब गरगरा जिसको कह देते हैं ना, कुछ गले से ऐसी आवाज निकल रही है, यानी जान जान कनी की जो कैफियत होती है, उस वक्त तौबा बंद, उससे पहले पहले तौबा, ठीक है ना। अब फिरौन के क्या गले में से ऐसी आवाजें निकलनी शुरू हो गई थी, हर बंदे की तो नहीं निकलती, आपने हो सकता है आपका तजुर्बा रहा हो किसी अपने नानी दादी किसी किसी अजीज की जो है वो मौत का वक्त आ गया, फिर उसके बाद उनकी रूह जो है वो परवास कर गई और गले से कोई ऐसी आवाज नहीं निकली, ठीक है ना। तो इस वजह से ये गरगरा जो है ना, ये तो समझाने के लिए एक कैफियत बयान कर दी जाती है, हर एक के साथ ये कैफियत नहीं होती। तो फिर व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर कि तौबा यहां तो कबूल होगी, तौबा उसके बाद नहीं कबूल होगी, वो क्या है जी? उसने मुशाहिदा कर लिया था। उसने मुशाहिदा कर लिया था क्या मतलब? मतलब ये है कि जब आखिरी वक्त आ जाता है ना, ठीक है ना, उस वक्त अल्लाह ताला फरिश्तों को भेज देते हैं, ठीक है ना, और उस वक्त जो है ना इस शख्स के सामने जिसकी अब मौत आ गई है, फरिश्ता फरिश्ता आ गया है ना इसके पास, ठीक है ना, उस वक्त अल्लाह ताला ना इसकी इसकी आंखों को खोल देते हैं आलमे बरजख के लिए। इस दुनिया में हम आलमे बरजख को नहीं देख सकते, पर्दा हट जाता है। जब पर्दा हट गया तो अब ईमान कैसा? तौबा तो भाई ईमान है ना कि मैं माफ मैं मुझसे गलती हो गई, अब तक मैं कुफर करता रहा था, अब तक मैं जो हूं वो आपके नबी को का इनकार करता रहा था, है ना, और तौबा कर ली। तौबा कर ली का मतलब अब मैंने गलती से माफी मांग ली है, अब मैं इनके ऊपर ईमान लेकर के आता हूँ, है ना, यही है ना तौबा, अब मैं ईमान लेकर के आता हूँ, ठीक है ना, तो अब ईमान लेकर आता हूं। तो ईमान होता क्या है भाई? ईमान क्या होता है? जो जो यानी अल्लाह नजर आना शुरू हो जाता है तब हम मान लेते हैं कि अल्लाह है, फरिश्ते नजर आना शुरू हो जाते हैं तब हम मान लेते हैं कि फरिश्ते हैं, राइट। पिछली किताबें जो हैं वो नाजुल होती हुई नजर आनी शुरू हो जाती हैं तब हम मान लेते हैं कि किताबें नाजुल होती हैं। नहीं, ईमान तो देख करके मुशाहिदा करके मानने का नाम है ही नहीं। मुशाहिदा करके तो मानना ये ईमान है ही नहीं। ईमान तो है खबर की बुनियाद पर मानना, खबर, नबी ने बताया है, मैंने नहीं देखा, नबी ने बताया है, मैं उसकी बात मान रहा हूं, ये है ईमान। तो जब सामने फरिश्ता नजर आ गया, जब जो है वो जहन्नुम की खिड़कियां जहन्नुम के नजारे नजर आने शुरू हो गए, अब कौन सा ईमान? तो जब ईमान नहीं तो तौबा भी नहीं। इस वजह से आपने जो सवाल किया ना कि फिरौन की तौबा क्यों कबूल नहीं हुई, क्योंकि उसने तौबा करी ही नहीं थी, उसने तो मुशाहिदे की बुनियाद पर, ठीक है ना, मान लिया था इस बात को, ठीक है ना। हर काफिर कयामत के दिन मान लेगा, है ना, क्योंकि कयामत के दिन सारे पर्दे हट चुके होंगे, सब कुछ नजर आ रहा होगा, तो हर काफिर को मानना होगा कि हाँ भाई यही है, ठीक है ना। तो फिर उस वक्त की तौबा तो नहीं है ना। तो जिस तरह आखिरत के दिन की तौबा नहीं है, मैदान हशर के अंदर कोई तौबा नहीं है, उसी तरीके से जब फरिश्ता नजर आना शुरू हो गया और जहन्नुम के दरवाजे जो है वो खुल गए, उसके बाद तौबा अब है ही नहीं, तौबा एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इस वजह से फिरौन ने तौबा करी ही नहीं थी, ठीक है ना। तौबा की डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को जब तक हम नहीं समझेंगे ना, उस वक्त तक पता नहीं क्या करते रहे अब तक, राइट। तो तौबा का ताल्लुक ईमान के साथ है, और ईमान जो है ना वो बिल गैब होता है, वो बिल मुशाहिदा नहीं होता, ठीक है ना। सब इंशाल्लाह सबको क्लियर है ये बात। खुलासे तफसीर शुरू कर लेते हैं। तो खुलासे तफसीर की तरतीब ऐसे होती है कि जो अंडरलाइंड होते हैं, खत कशीदा कहते हैं उसको, या तहतु सतर, ठीक है। तो ये जो है ना तर्जुमा होता है खुलासे तफसीर के अंदर, और जहां ब्रैकेट शुरू हो जाते हैं, कौसैन, उर्दू में ब्रैकेट्स को कौस कहते हैं, कौस जैसे वो एंगल होता है ना, कौसे कजा, कौसे कजा जो है वो एक एक ब्रैकेट की शक्ल में होती है, एक एंगुलर फिगर होती है, ठीक है ना। तो अब हमें तो क्योंकि उर्दू हमने तो पढ़ी नहीं, हमने तो या तो अंग्रेजी पढ़ी है मीडियम लेवल की, या जो है वो इंग्लू पढ़ी है, इंग्लिश प्लस उर्दू, तो इस वजह से ये भी हमें भी जरा सीखना पड़ा था कि भाई ये कौसैन होते हैं, बैनुल कौसैन विद इन द ब्रैकेट्स। तो बैनुल कौसैन जो है ना वो तफसीर होती है, ये है तरतीब खुलासा तफसीर की। माशाल्लाह इन्होंने फिर सवाल किया है कि तौबा कैसे करते हैं। अब ये सवाल इतना अहम है, और हो सकता है और भी लोगों के जहन में हो, कुछ कुछ नए लोग नजर आ रहे हैं, तो इस वजह से इस सवाल को स्किप नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो तौबा कैसे करते हैं? तौबा करने के लिए तीन काम करने होते हैं, जब ये तीन काम आप कर लेते हैं तो तौबा हो जाती है, ठीक है ना। पहला काम ये होता है कि जितने भी और जो भी गुनाह किए हैं उन सब के ऊपर नादिम और शर्मिंदा होना, ठीक है ना, अफसुरदा होना, गलती को तस्लीम करना कि मैंने बुरा किया, मैंने गलत किया, इसको कहते हैं नादिम होना, ठीक है ना। ये पहला काम है कि जो भी अल्लाह आपकी नाफरमानी हो गई, मुझसे गलती हो गई, है ना, वो उसके ऊपर मैं शर्मिंदा हूं, ठीक है, ये पहला काम है। दूसरा काम ये करना होता है कि अल्लाह ताला से फिर ये भी साथ साथ कहना होता है कि आइंदा नहीं करूंगा, आइंदा नहीं करूंगी, ठीक है ना। ये अल्लाह ताला से कहना, जुबान से नहीं, अल्लाह ताला तो दिलों का हाल जानते हैं ना, तो अल्लाह ताला से जुबान दिल दोनों के साथ, अल्लाह अब नहीं करूंगी, पीछे हो गई गलती हो गई, आप माफ कर दीजिए, आइंदा नहीं करूंगी, ठीक है ना। ये दूसरा काम, ठीक है। और तीसरा काम ये करना होता है कि अब जो कह दिया ना आइंदा नहीं करूंगी, ठीक है ना, अब इसके लिए कुछ कदम भी उठा लेना, कुछ कुछ एफर्ट, कुछ ना कुछ स्टेप ले लेना, ठीक है ना। वो क्या कि किसी किसी नेक सोहबत को ज्वाइन कर लेना, किसी क्लास को ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना, किसी बंदे से जाकर के जो नेक बंदा हो, जो 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 गाइड करने का काम करता हो, इस्लाह का काम करता हो या करती हो भी, ठीक है ना, तो उनसे जाकर के जो है वो ताल्लुक बना लेना, इस्लाही ताल्लुक, कि हाँ जी मैं अब आपसे पूछा करूंगी, मैं आपसे सीखा करूंगी, दीन पे चलना चाहती हूँ मैं, ठीक है ना। तो यानी एनीथिंग, कोई भी काम आप इस तरह का कर लेना, जिससे कि क्या हो कि आपको इस तौबा के ऊपर फिर हेल्प भी मिल सके, ठीक है ना, इसके ऊपर इस्तकामत भी आपको इस तरीके से मिल सके। ये तीसरा स्टेप, ठीक है ना, ये तीन काम जब इंसान कर लेता है ना, तो इसको इसके मजमुए को तौबा कहते हैं, इसको कहते हैं तौबा, ठीक। तो तौबा ऐसे करते हैं। तो पहले दो काम जो हैं ये तो अभी इसी वक्त आप कर सकती हैं, ठीक है ना, और तीसरा जो काम है वो उम्मीद ये है कि आपने ऑलरेडी कर लिया है, कि आपने कुरान मजीद की तफसीर की क्लास ज्वाइन कर ली है और आपने सवाल पूछने शुरू कर दिए, सीखना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो तीसरा काम माशाल्लाह आपने पहले कर लिया, और बाकी दो काम जो है वो आप कर लें, तौबा हो गई, ठीक है। अल्लाह ताला तौबा को कबूल कर लेते हैं, और फिर तौबा करने वाले से अल्लाह ताला मोहब्बत करना शुरू हो जाते हैं, और तौबा करने वाले के सारे पिछले अमाल, सारे पिछले गुनाहों को अल्लाह ताला माफ कर देते हैं, ठीक है। उन्होंने लिखा, जितने भी गुनाह हैं उन पर शर्मिंदा होना, जिस गुनाह से तौबा की है उस गुनाह को नहीं दोहराना, नहीं नहीं दोहराना नहीं, बल्कि अल्लाह ताला से ये वादा कर लेना कि अब नहीं दोहराऊंगी, यह दूसरा काम, अल्लाह से वादा कर लेना अब नहीं दोहराऊंगी, अब नहीं करूंगी, ठीक है ना। अल्लाह के करीब जो लाए उनकी सोहबत में रहना, इम्पोर्टेंट दीन की महफिल से जुड़े रहें ताकि तौबा पर साबित कदम रह सके। हाँ, कोई ना कोई ऐसा इकदाम कर लेना, स्टेप उठा लेना कि जिससे कि आपको तौबा के ऊपर फिर जमे रहने में भी मदद मिल जाए, कोई भी ऐसा स्टेप। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमेशा याद रखें, बहुत जबरदस्त किस्म की हदीस मुबारका है, ठीक है ना, कि एक शख्स था जिसने 99 कत्ल किए थे, 99, राइट। तो अब जो है ना वो शख्स, उसके दिल में नदामत हुई, यानी पहला स्टेप उसके दिल में हो गया कि मैंने गलत किया, मुझे इतने लोगों को कत्ल नहीं करना चाहिए था, मैंने गुनाह का काम किया, नादिम हो गया वो, ठीक है। फिर उसने जो है ना वो अल्लाह ताला से दिल के अंदर नियत कर ली कि अब मैं दोबारा नहीं करना चाहता, राइट, बहुत हो गया, बहुत बंदे मार दिए मैंने, ठीक है ना, अब मैं नहीं मारना चाहता बंदे, ठीक है ना, इरादा कर लिया ना उसने दिल में, ठीक है ना। फिर उस इरादा करने के बाद तीसरा काम उसने क्या किया कि वो अब तलाश में निकला पूछने, है ना, कि मैं किसी से पूछूं कि जी क्या मेरी तौबा कबूल हो गई है, यानी ही वॉज वरिड, उसको फिक्र पड़ गई थी कि मैंने क्या तौबा कर भी ली है, तो अब उसने पूछने वाला कोई बंदा तलाश जो मुझे बता सके, वो पूछते पूछते एक आबिद के पास पहुंच गया जिसके पास इल्म शिल्म कोई नहीं था, इबादतें करता रहता था, नमाजें पढ़ता रहता था, ठीक है ना, यानी नफले पढ़ता रहता था, ठीक है। ऐसे शख्स के पास पहुंचा और उसे पूछा कि ये बताओ कि मेरी तौबा कबूल भी हो गई है कि नहीं, ठीक है ना। तो अब उसने कहा कि तेरी तौबा कैसे कबूल होगी, तुमने तो 99 बंदे मार दिए, है ना, ये कैसे होगा फिर, अब इतना कुछ तुमने 99 घर बर्बाद कर दिए तुमने, यानी एक बंदा मार देना कोई मामूली बात होती है, उसकी औलाद को यतीम कर दिया, बीवी को जो है वो बेवा कर दिया, माँ बाप को जो है वो गमगीन कर दिया,
उनके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया, यानी एक बंदा मारना कोई मामूली बात नहीं होती है ना, आप गोया कि कायनात उजाड़ देते हैं ना, एक बंदे का मरना जो है वो यानी कितनों की कायनात उजाड़ने के बराबर होता है। और इसने 99 बंदों की कायनात उजाड़ी, 99 बंदों से रिलेटेड लोगों की कायनात उजाड़ी थी, ठीक है ना। अब आबिद साहब ने अपनी अकल, अकल यही कहती है ना कि इतना इतना बड़ा इसने हरकत करी है तो इसकी कैसे माफी होगी, अकल, ठीक है ना, इल्म नहीं था उसके पास, अकल इस्तेमाल करी, जवाब दे दिया अपनी अकल से, जैसे हम भी करते हैं, इल्म होता नहीं है, अपनी जो 1.5 इंच की अकल होती है उसके ऊपर जवाब दे देते हैं, ठीक है ना। उसने भी यही हरकत करी हमारी वाली, ठीक है ना। तो इसको इतना गुस्सा आया कि इसने जो है ना नादिम था अपने कत्लों के ऊपर, और इरादा भी कर चुका था कि अब मैंने नहीं करना, ठीक है ना, ये अपने इरादे पर कायम नहीं रह सका, जैसे हम अपने इरादे पे कायम नहीं रह पाते, ये भी कायम नहीं रह पाया, और इसने सवा बंदा भी मार दिया। पता है ना ये वाली हदीस सबको, राइट, ये अपने इरादे पे कायम नहीं रह पाया ना, है ना, 100th मैन उसको भी, ठीक है, लेकिन गलती हो गई, फिर गलती हो गई, अब जो है ना मायूस नहीं हुआ, अभी भी ये अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुआ, और अभी भी जो है ना ये बैठ करके रोना धोना करके इसने खुदकुशी नहीं कर ली, बल्कि अब अगले बंदे की तलाश में निकल खड़ा हुआ, किसी और से पूछता हूं मैं, ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला इतने रहीम इतने बड़े हैं वो मुझे माफ ना करें, ये कैसे हो सकता है, ठीक है ना, तलाश में निकल खड़ा हुआ, अब के अल्लाह ताला इसको एक आलिम के पास पहुंचा दिया अल्लाह ताला ने, आलिम दीन, राइट, जो कि अकल की बुनियाद पर खाली जवाब नहीं देता बल्कि इल्म वही की बुनियाद पर जवाब देता है, और साथ साथ उसको समझाने के लिए अकल भी इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। आलिम दीन के पास पहुंचा और कहा कि मेरी तौबा कबूल हुई कि नहीं, ना भाई हो गई तुम्हारी तौबा कबूल, ठीक है ना। अब इसने तीसरा काम किया, असल में इसने कहा अच्छा अब मुझे क्या करना चाहिए, ये बता दें, ये भी आप बता दें मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है ना। उस आलिम दीन ने इसको जवाब दिया, जिस बस्ती में तुम रहते हो ना ये सोहबत अच्छी सोहबत नहीं है, यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रेशर्स होते हैं, पीयर प्रेशर्स, राइट, यहाँ पे तुम्हारी फैमिली भी होगी, ठीक है ना, यहाँ पे दूसरे लोग भी होंगे जिनके साथ तुम्हारा कुछ ना कुछ झगड़ा चलता रहता होगा, कुछ ना कुछ मसले चलते रहते हैं ना, यहाँ पे तुम गुनाह से बच नहीं पाओगे, ठीक है ना। अभी तुम 100 बंदे मार करके आए हो, कल को 101 भी मार दोगे, है ना, फिर उसके बाद 102 वो भी मार दोगे, चलता रहेगा तुम्हारा सिलसिला यहाँ पर। तो अब तुम जो है ना वो इस बस्ती को छोड़ो और एक नेकू की बस्ती है तुम उसकी तरफ चले जाओ, राइट, उसकी तरफ चले जाओ। इसने बात मान ली, इसने ये नहीं कहा तुम कौन होते हो मुझे नसीहत करने वाले, माइंड योर ओन बिजनेस, मैंने तुमसे जो पूछना था ना पूछ लिया, अब आगे मुझे डायरेक्शन मत देना, हाँ जैसा कि हम करते हैं दुआ कर देना मेरे लिए, बताना मत कि मुझे क्या करना चाहिए, दुआ कर देना, जैसे कि हमने अपने मशाइख को जो है ना वो दुआ की वेंडिंग मशीन बनाया हुआ है, वेंडिंग मशीन समझते हैं ना, अब तो पाकिस्तान में भी इंडिया में भी हर जगह लगी हुई होती है ना, वहां पर एक दरख्वास्त डालते हैं, पैसे की शक्ल में डालते हैं, कॉइन की शक्ल में डालते हैं, ठीक है ना, तो वो अंदर डालते हैं और अंदर से जो है ना एक एक, एक, एक पेप्सी का कैन निकल आता है, एक जो है वो चिप्स का पैकेट निकल आता है, ठीक है ना, कहीं पे कुछ निकल आता है, कहीं पे कुछ निकल आता है, उसी तरह हमारे मशाइख जो है ना ये है दुआ की वेंडिंग मशीन, हम उनसे कहते रहते हैं आप जी मेरे लिए दुआ कर दीजिए, आप मेरे लिए दुआओं में याद रखिए, आप दुआ कर दिए, हत्ता के लोग जा रहे होते हैं दुआएं लिख लिख करके भेजते हैं, है ना, दुआएं लिख लिख करके भेजते हैं, दूसरों के हाथों भी लिख लिख करके भेजते हैं, ठीक है ना, पूछना नहीं होता हमने कि आप मुझे बताएं कि मुझे करना क्या चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, मैं क्या सही कर रही हूँ मैं क्या गलत कर रही हूँ, आप मेरी इस्लाह फरमा दीजिए, आप मुझे गाइड कर दीजिए, राइट, ये नहीं करना होता, और ना जो है वो उन्होंने पहले से जो गाइडेंस दी हुई है, पहले से जो चीज़ें बताई हुई हैं, है ना, जैसे कि उनके बयानात हैं, उनकी मलफूजात हैं, उनकी किताबें हैं, या उनके हमें डायरेक्ट भेजे हुए मैसेजेस हैं, वो हमने नहीं पढ़ने होते, है ना, कि कहीं हमें उनकी माननी ना पड़ जाए, पढ़ लेंगे तो माननी पड़ जाएगी, राइट, सुन लेंगे तो माननी ना पड़ जाए, कहीं सबसे अच्छा और सबसे आसान हल क्या है, दुआएं करवाते रहो, दुआएं मांगते रहो उनसे, जिस तरह वेंडिंग मशीन से दुआ मांगी जाती है, वेंडिंग मशीन से दूसरी चीजें मांगी जाती हैं, ठीक है ना, उसी तरह इनसे जो है ना वो दुआ मांगते रहो, ठीक है। तो ये नहीं है, ऐसे नहीं है, बल्कि जो उलमा होते हैं ना, जो मशायख होते हैं, इनकी असल कदरदानी ये होती है कि इनसे हिदायत ली जाए, इनसे डायरेक्शंस ली जाए, इनसे सीखा जाए और फिर उसके ऊपर अमल करने की कोशिश की जाए, ठीक है ना, तब बात बनती है। वरना तो ये जो हम दुआएं करवाते भी है ना, जो लिख लिख करके भेजते रहते हैं ना, ये कोई दुआएं मिलती कोई थोड़ी है इनसे, है ना, पता नहीं उनको मैसेज मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा, उनको आपको कुछ पता भी है कि नहीं पता है, वो आपके लिए दुआ करेंगे, वो अक्सर तो जुबान से हाँ जी दुआ कर दी, जुबानी तौर पर दुआ कर दी, दिल से कोई थोड़ी दुआ निकलती है, बहुत कम होता है जो दिल से भी दुआ निकल रही होती है। या ये कि जो ऐसे हम फ्री की दुआएं मांगते हैं ना, फ्री की दुआएं, बल्कि करवाते हैं, फ्री की दुआएं करवाते हैं, ठीक है ना, तो इसमें वो ज्यादा से ज्यादा दुआ करते हैं, वो भी अच्छी होती है। ये नहीं कि हमें नहीं करना चाहिए दुआएं, दुआएं के लिए कहना नहीं चाहिए, नहीं कहना चाहिए, ये नहीं हम कह रहे कि दुआओं के लिए कहें नहीं, कहें दुआओं के लिए, लेकिन जो उन्होंने डायरेक्शंस दी हैं उनके ऊपर तो अमल करने की कोशिश करें, उनको तो सीखने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो इस वजह से ना जो फ्री की दुआएं करवाते हैं ना, तो उसमें भी दुआएं मिल जाती हैं, वो क्या दुआ होती है, ऐ अल्लाह इसको सीखने की तौफीक अता फरमा दी, ऐ अल्लाह इसको पूछने की तौफीक अता फरमा दी, ठीक है ना, इससे ज्यादा दुआ नहीं मिलती, बता दूं आपको मैं, इससे ज्यादा दुआ नहीं मिलती, ठीक है ना। बहुत ही किसी के हालात बहुत ही खराब हो गए हों, बहुत ही ज्यादा तकलीफ में हो और मुश्किल में हो, फिर उसके लिए कुछ दुआ कर देते हैं कि हाँ अल्लाह इसकी मुसीबत को दूर फरमा दीजिए, इसकी तकलीफ को हल फरमा दीजिए। इसको ऐसे जो हम चलते फिरते जो है ना, जो दुआएं मंगवाते रहते हैं ना हर वक्त चलते फिरते, जिसको कहते हैं वो ग्रेवी में या ऐसी है ना फ्री में जो दुआएं करवाते रहते हैं ना, इस खुशफहमी में ना रहे कि मशायख के पास दुनिया में करने का और कोई काम नहीं है, बैठ करके आपके लिए दुआएं करते रहते हैं हर वक्त, ऐसा नहीं है, हकीकत में ऐसा नहीं है आपके लिए। आपसे भी तो लोग कहते होंगे ना कभी, हाँ जी आप तो बड़ी माशाल्लाह मौलविया बन गई हैं, आलमा बन गई हैं, आप जो है ना बड़ी वो यानी तफसीर की क्लास लेना शुरू हो गई है, जी मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा, है ना। अब सच सच बताएं, क्या आप बैठ करके लोगों के लिए दुआएं करती रहती हैं, आपके घर में काम नहीं होते, आपको पकाना नहीं होता, आपको बच्चों को खिलाना नहीं होता, आपको बच्चों को पढ़ाना नहीं होता, आपको और बहुत सारे काम नहीं करने होते, आपके पास वक्त कहाँ से आएगा कि आप बैठ करके सबके लिए दुआएं करते रहें। तो जिस तरह आपके पास वक्त कम होता है ना, मशायख के पास तो और भी वक्त कम होता है, उनके पास तो और जिम्मेदारियां होती हैं, और लोग होते हैं जो कि सीखने वाले लोग होते हैं, जो पूछने वाले लोग होते हैं, तो इनके पास 24 घंटे में ऐसे नहीं होता कि बैठ करके आपके लिए दुआएं करते रहें, और कोई काम नहीं है इनको करने के लिए, क्या Right? तो ये ना, ये हमने ऐसी एक बनाए हुए हैं तखयलात बनाए हुए हैं कि जी बस इनके पास तो और कुछ है नहीं, जो चाहो उनसे दुआएं करवा लो बैठ करके। नहीं, दुआएं लेने की जरूरत होती है, दुआएं लेना सीखना चाहिए, ठीक है। और उसके तरीका यही है कि इनको इनकी कदरदानी करें कि इनसे मुझे सीखना है, इनसे मुझे पूछना है, ठीक है। लगता है लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, अपनी चीजें पूछे चले जा रहे हैं, अच्छी बात है, हम भी तो पूछने के लिए कह रहे हैं। तो इस बंदे ने जो है ना वो तीसरा काम ये किया कि पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो उसने आगे से बता दिया कि तुम इस बस्ती को छोड़ो, अगली बस्ती में चले जाओ, और इसने उनकी बात मान ली। अब जब इसने बात मान ली, तीनों चीजें मुकम्मल हो गई, नदामत तो पहले से थी, इरादा भी पहले से था, और अब इसने स्टेप भी ले लिया। जब इसने स्टेप ले लिया, अब इसके बाद उसको आ गई मौत, पता है आपको मौत आ गई इसको, अल्लाह ताला ने 100 कत्ल इसके माफ कर दिए, इसको जन्नत में डालने का हुक्म फरमा दिया, ठीक है ना, कि भाई इसके लिए जन्नत के फैसले हो चुके हैं, फरिश्तों को हुक्म फरमा दिया। तो यही तीन काम जो है ना वो हमें भी करने होते हैं। हुकूकुल इबाद की जो गुनाह, किसी ने सवाल किया है कि हुकूकुल इबाद की जो गुनाह होते हैं, अब तब तक वो माफ नहीं होते हैं जब तक उस बंदे से माफी ना मांग ले जिसका हक आया हो। अब अगर कोई इस बंदे से नहीं मांग पाए माफी जिसका हक आया हो, तो उसके लिए क्या करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत है उस गुनाह की माफी मांग लेना काफी होगा, अल्लाह ताला से माफी मांग लेना उस वक्त काफी होगा जब उससे माफी मांगने की कोई सूरत ना बन रही हो ना, कोशिश कर ली है, फिक्र कर ली है, और
उसके बारे में आपने यानी जो कर सकते थे वो कर लिया है, लेकिन नहीं नहीं हो पा रहा, चाहे उसकी वजह यह है कि उस बंदे का इंतकाल हो गया है, चाहे उसकी वजह यह है कि वो बंदा इतना दूर कहीं चला गया है कि अब आपकी उससे मुलाकात नहीं हो सकती, या उसकी वजह यह है कि पहले तो आप बेपर्दगी की जिंदगी गुजार रही थी तो इस वजह से मर्दों से भी बातचीत और सब कुछ चलता रहता था, अब जब पर्दे की जिंदगी गुजारनी शुरू करी है तो अब वो जो शख्स था वो तो नामहरम था, तो अब नामहरम से जाकर कैसे आप माफी मांग लें, ये बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है ना, तो हर कोई नामहरम से जाकर के माफी तो नहीं मांग सकता ना, ठीक है, तो ये भी सूरत हो सकती है, या ये सूरत हो सकती है कि अगर आप उससे माफी मांगने के लिए जाएंगी तो वो माफ तो करना मुश्किल है, वो उल्टा जो है ना वो एक नया फसाद हो जाएगा, है ना, और एक अजीब गरीब किस्म की सिचुएशन पैदा हो जाएगी, तो इस वजह से बेहतर यह है कि उससे अभी माफी ना मांगी जाए, ठीक है ना। बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं कि आप माफी नहीं मांग सकते, ऐसी सूरत में फिर उलमा ने लिखा है कि उसकी तरफ से सदका खैरात, ठीक है ना, या अगर आपके पास पैसे नहीं है तो उसकी तरफ से कुछ इबादत नफली इबादत वगैरह करके अल्लाह ताला से ऐसे दुआ की जाए कि अल्लाह ये जो इबादतें मैंने करी हैं या ये जो सदका खैरात किया है ना इसका सवाब जो है वो उस बंदे को पहुंचा दीजिए, ठीक है ना, उस बंदे को दे दीजिए और इसके बदले में उससे मुझे माफ करवा दीजिए, माफ करवा दीजिए। इसलिए आपने शायद कभी सुना भी हो दुआओं के अंदर कि अल्लाह आप माफ कर भी दीजिए और अहना आप मुआफ करवा भी दीजिए, ठीक है ना, जिस तरह अल्लाह ताला के लिए मुआफ करना आसान है ना उसी तरह अल्लाह के लिए मुआफ करवाना आसान भी है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस जी मुझे तो माफी मांगनी नहीं है, मेरी अना को ठेस लगती है ना, मेरी इज्जत खराब, मैं कैसे किसी से माफी मांगू, बस अल्लाह तू ही माफ करवा देना, नहीं ये एटीट्यूड अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, अल्लाह ताला के सामने आजजी और इंकसारी चलती है, तो अल्लाह ताला फिर ना जो बंदा आजजी इंकसारी सही मानों में इख्तियार करता है, उलमा की बात मानता है और कोशिश करता है उनकी बात पर अमल करने की, फिर उसके बाद नहीं हो पाता तो फिर अल्लाह ताला से दुआ करता है, अल्लाह ताला फिर उसकी दुआ को कबूल कर लेते हैं, माफ कर भी देते हैं और माफ करवा भी देते हैं। तौबा की कबूलियत की क्या अलामत है? तौबा की कबूलियत की अलामत यह है कि अब आपको ना एक रोग लग जाता है, ठीक है, गुनाह जो है ना फिर आपको बुरे लगने शुरू हो जाते हैं, है ना, और अब आइंदा अब आपसे गुनाह हो जाता है ना, तौबा की कबूलियत की अलामत ये नहीं है कि अब आपसे गुनाह होगा नहीं, नहीं ये नहीं अलामत, क्योंकि ऐसा कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ सवाए नबियों के और बड़े औलिया के, कोई पैदा नहीं हुआ जो कि गुनाह ना करता हो, ठीक है ना, तो ये तो गुनाह तो हो जाएगा, हो भी तो अब बहुत सारे गुनाह होते हैं, ये तो नहीं है कि खाली शराब पीने वाला गुनाह जो है वही गुनाह है, हाँ शराब से आपने तौबा कर ली तो ठीक है आप बाकी मानदा जिंदगी में शराब शायद छोड़ दें, ठीक है ना, लेकिन गुनाह तो भाई ये नहीं है कि सिर्फ शराब। अच्छा ये भी एक बड़ी गलत फहमी है उर्दू जुबान की वजह से, उर्दू जुबान में जो हम जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं अल्फाज को तो उससे कुछ गलत फहमी पैदा हो जाती है, वो क्या है, शराब से तौबा कर ली, राइट, टीवी से तौबा कर ली तो इसका मतलब है कि तौबा हो गई, नहीं ये तौबा नहीं है, ये जो हम कहते हैं ना शराब से तौबा कर ली टीवी से तौबा कर ली, इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि टीवी देखना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया, ये होता है इसका मतलब, लेकिन ये तौबा नहीं होती है। तौबा जो है ना ये होता है 100% गुनाहों से तौबा, 100% 100%, ठीक है ना, इसी वजह से तौबा जो है ना ये यू टर्न करने को भी कहते हैं, यू टर्न, ये नहीं होता कि जी आप चले जा रहे हैं अभी भी गुनाहों के रास्ते के ऊपर और आपका इरादा है कि मैं अभी और चलता रहूंगा गुनाहों के रास्ते के ऊपर और उसमें से आपने एक चीज छोड़ दी दूसरी चीज छोड़ दी तीसरी चीज छोड़ दी तो आप समझ रहे हैं कि जी तौबा हो रही है तौबा हो रही है तौबा हो रही है, नहीं, जब तक आपका डायरेक्शन उस तरफ है ना, ठीक है ना, तो आप कितने ही गुनाह छोड़ते रहें ये आपकी तौबा नहीं हुई है, आपने छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है कि आपने शराब छोड़ दी, बहुत अच्छी बात है आपने टीवी छोड़ दी, लेकिन अभी भी दूसरे गुनाहों को छोड़ने का आपका इरादा तो नहीं हुआ है ना, ठीक है ना, अभी भी आपका इरादा नहीं है कि मैं बेपर्दगी छोड़ूंगी, ठीक है ना, तो जब तक आपका बेपर्दगी छोड़ने का इरादा नहीं है तो जितनी चीजें अब तक छोड़ी है ना, ठीक है ना, तो वो बहुत अच्छी बात है कि आपने छोड़ दी एक एक करके छोड़ दी, ठीक है ना, लेकिन तौबा नहीं हुई अभी तक, तौबा नहीं हुई अभी तक। तौबा तो उस वक्त होगी जब आप सारे गुनाहों को छोड़ने का इरादा कर लेंगे। इरादा, छोड़ने की बात नहीं होनी, छोड़ने का इरादा कर लेंगे, सारे गुनाहों के ऊपर शर्मिंदा और नादिम हो जाएंगे, ठीक है ना, तब तौबा होती है। ठीक है, तो तौबा ना थोड़ा सा, यानी तौबा सबसे बड़ा अमल है, लेकिन सबसे बड़ा अमल जो होता है ना, वो फिर थोड़ा सा तो उसके अंदर दिमाग, अकल शरीफ को इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि सबसे बड़ा अमल भी कर लें और अकल शरीफ जो है ना वो तय करके रखी हुई हो तकिए के नीचे, है ना, और सबसे बड़ा अमल भी हो जाए। नहीं, अकल शरीफ इस्तेमाल करके तौबा होती है, बेअकली के साथ और यानी बेवकूफ़ी के साथ तौबा नहीं होती। जिस तरह बाकी काम बेवकूफ़ी से नहीं हो सकते ना, तो सबसे बड़ा काम कैसे बेवकूफ़ी के साथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको कम अहमियत ना दें, ये सबसे अहम चीज है और इसके लिए अकल भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। हमें कैसे पता चले? तो तौबा की कबूलियत की अलामत जो है ना, वो सिर्फ ये है कि आपको सारे गुनाहों के ऊपर अब नदामत होती है, शर्मिंदगी होती है, ठीक है ना, और आप सबको छोड़ने का इरादा करती हैं। और तीसरी बात क्या थी कि आपने सिस्टम ज्वाइन कर लिया है, इस्लाही ताल्लुक बना लिया है, तफसीर की क्लास ज्वाइन कर ली है, या कोई आलमा कोर्स ज्वाइन कर लिया है, या कोई आपने कोई ऐसा कोई सिस्टम ज्वाइन कर लिया है, ठीक है ना, जो कि नेक रहने में आपको मदद कर सके। ये तीन काम आपने कर लिया है ना, तौबा की कबूलियत हो गई। ठीक है जी, एक और भी मैसेज आया हुआ डायरेक्ट है तो लोग पढ़ नहीं सकते, कि हमें कैसे पता चले आबिद है, परहेजगार है और हमारे पास ऑनलाइन के अलावा कोई सोर्स नहीं है, हमें कैसे यकीन करें कि हम सही इल्म हासिल कर रहे हैं और सही लोगों से जुड़े हुए हैं? ये सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि आजकल बहुत कंफ्यूजन है। जी वाकई आजकल बहुत कंफ्यूजन है, तो इसी वजह से और फ़कत ऑनलाइन कोई बात सुन करके जो कि आपको अच्छी लगनी शुरू हो जाए और आपको जो है वो सही लगनी शुरू हो जाए, उसकी बुनियाद पर आप किसी के साथ नहीं जुड़ सकते, फ़कत ऑनलाइन। ठीक है, तो इसका क्या तरीका है कि कैसे आप जो है वो सही सोर्स तक पहुंचे कि भाई सही हैं, परहेजगार हैं, गलत अकायद की प्रीचिंग तो नहीं कर रहे हैं वगैरह। तो इसके लिए जो है ना, फिर आपको उलमाए कराम से पूछना होता है, ठीक है ना, उलमाए कराम जो जो के जिनको के यानी आपके जानने वाले लोग या आपके जानने वाले दूसरे उलमाए कराम जिनको उलमाए कराम समझते हो, सही मानते हो, ठीक है ना, तो ऐसे उलमाए कराम जो है ना वो उनसे फिर पता चलता है कि जी ये जो ऑनलाइन मौजूद हैं, जो क्लासेस कर रहे हैं या जो जो भी जिनके भी लेक्चर्स हैं, तो ये सही है कि नहीं है, इनके साथ जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए, ठीक है ना। ये नॉलेज जो है ना, ये आपको उलमा से लेनी पड़ती है, उलमा से आप जो है ना जो जो यानी अब इसमें जरा ये भी समझना पड़ता है कि जी उलमा का काम क्या है। उलमा का काम, जो आम उलमाए कराम होते हैं ना, उनका काम ये होता है कि आपको फतवा देना, ठीक है ना, कि भाई ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ठीक है ना, ये आम उलमाए कराम होते हैं, ठीक है। तो उनसे बेसिकली आप किसी ऐसे शख्स के बारे में पूछ सकते हैं कि जिनके साथ आपका इस्लाही ताल्लुक का इरादा हो, बाकायदा जो है ना वो उनके यानी या तो बैत होने का इरादा हो, या इस्लाही ताल्लुक बनाने का इरादा हो, या बाकायदा जुड़ जाने का जिनके साथ आपका इरादा हो ना, उनके बारे में आप पूछेंगे किन से? उलमाए कराम के साथ पूछें, उलमाए कराम से पूछेंगे। उलमाए कराम ये उनका ये काम नहीं होता कि भाई अगर अगर उनसे पूछना है तो मैं उन्हीं से क्यों ना जुड़ जाऊँ, है ना। भाई एक सवाल पैदा होता है ना कि भाई उलमाए कराम से आप कह रहे हैं कि जी पूछना होता है मशायख के बारे में, तो मैं उलमाई से क्यों ना जोड़ जाऊं, बस काफी है। नहीं, उलमा का काम है ही नहीं जोड़ करके रखना, उलमा का ये काम नहीं है जोड़ करके रखना, उलमा का काम है फतवा देना। वो आपको बताएंगे कि जुड़ किससे सकते हैं आप अपनी इस्लाह करवाने के लिए, ठीक है ना, अपने जाती मशवरों करने के लिए आप किससे जुड़ सकते हैं, ये आपको उलमा बताएंगे, ठीक है ना। तो ये जो इस्लाही ताल्लुक वाले लोग होते हैं ना, वो इस वजह से ना उनके लिए टाइटल जो है वो शेख का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। और उलमा जो होते हैं वो लोग होते हैं जो कि आपको यानी थ्योरेटिकल जिनके पास नॉलेज होती है और जिनको ये पता होता है कि सही अकीदा कौन है, कौन लोग जो है वो अगर ऑनलाइन मौजूद है तो वो सही बात की तालीम दे रहे हैं, कौन गलत बात की तालीम दे रहे हैं,
तो ये उलमा का काम होता है बताने का। खैर ये एक जरा काफी डिटेल टॉपिक है, उसको आपको समझने में भी वक्त लगेगा। अगर आप ये आपका शायद पहली दफा अगर इस का सवाल है तो इट विल टेक यू टाइम टू डाइजेस्ट ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इस बुनियाद पर कि जी मैं जो सुन रही थी तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, है ना, बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, है ना, नहीं ये काफी नहीं है, बिल्कुल भी ये काफी नहीं है, है ना। जो 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 मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के पैरोकार बन जाते हैं ना, है ना, उनको मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की बातें अच्छी लग रही होती, जब ही तो वो पैरोकार बनते हैं उसके। जो गुलाम अहमद परवेज जो मुनकर हदीस और बहुत बड़ा फितना था, वो परवेजी फितना जिसको कहते हैं, जो परवेज को फॉलो करना शुरू हुआ उनको परवेज की बातें अच्छी लग रही थी। आज के दौर में जो ये क्या नाम है जावेद अहमद गामदी मीडिया स्कॉलर, तो इतने बड़े फॉलोइंग उसकी मौजूद है दुनिया के अंदर, ठीक है ना, तो वो क्या उन लोगों को इसकी बात बुरी लग रही होती है? नहीं, अच्छी लग रही होती है इसके बाद जब भी तो उसको फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे इंजीनियर मिर्जा, पता नहीं आजकल तो उसका नाम भी ज्यादा सुनने में नहीं आ रहा है ना, तो इतने बड़े फॉलोअर्स उसके, अच्छी बातें, बड़ा अच्छी बातें तो करते हैं, बड़ी तो बड़ी लॉजिकल बातें करते हैं बड़ी, है ना। तो भाई लॉजिकल बातें और अच्छी बातें इस बुनियाद के ऊपर तो फिर कोई भी ठीक तो ऐसा नहीं हो सकता, ये तरीका नहीं है। तो खुलासा तफसील तो फिर हम शुरू नहीं कर सके, अगर वक्त खत्म हो गया क्लास का, तो और कोई अगर सवाल पूछना हो या इसी सवाल के जवाब से, जाहिर है बहुत सारे और सवाल भी निकलते हैं तो भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं ना, ठीक है ना, इस वक्त कोई 46 स्टूडेंट्स मौजूद हैं प्लीज, ठीक है, तो आप लोग जो यहाँ पर आए हैं ना, तो अगर तो आप आए हैं फकत ऑनलाइन ब्राउजिंग करते करते यहां तक पहुंच गए, ठीक है ना, तो ये गलत है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ऑनलाइन ब्राउजिंग करते करते जो है वो फलानी जगह पहुंच गए तो अब उनको सुनना शुरू कर दिया, कल को ब्राउजिंग करते करते कहीं और पहुंच जाएंगे उनको पढ़ना सुनना शुरू कर देंगे, परसों कहीं और पहुंच जाएंगे उनको सुनना शुरू कर देंगे, नहीं, दिस इज द रॉन्ग अप्रोच, ऐसा नहीं करना है आपने, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर आए हैं ना तो उसकी रीजन ये होनी चाहिए कि आप किसी की रिकमेंडेशन पर आए, ठीक है ना, और उनकी रिकमेंडेशन जो है ना वो भी ऐसी नहीं कि बस कोई भी आपको रिकमेंड कर दे, ठीक है ना भाई, उनकी जिंदगी को भी आपको देखना होगा और ये चेक करके आए कि जी उलमा का क्या इसके ऊपर मौकफ है ना, उलमाए कराम का, सही, और उलमाए कराम अब आप देख लें भी कौन किन लोगों का आप उलमाए कराम कहते हैं। हमारा जो जो सिलसिला है वो है दारुल उलूम देवबंद के साथ, दारुल उलूम देवबंद के साथ, ठीक है ना। हमारे मशायख और हमारे उलमाए कराम, हमारे असातिज़ाए कराम, ये सारे के सारे जो है ना वो इंडिया के अंदर जो दारुल उलूम देवबंद है उसी के शाखें हैं, सब के सब, पाकिस्तान में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं। तो हमारा मसलक जो है वो दारुल उलूम देवबंद के उलमाए कराम का मसलक, ठीक है ना, तो ये पता होना चाहिए आपको भी ऐसा है। वो उनके माशाल्लाह आप देवबंद से जाकर के फतवा लें, आप जो है वो उनके दूसरे उलमाए कराम होते हैं, इंडिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, आप उनसे पूछें, ठीक है, कि ये कौन लोग हैं, सही है। आपने एक बात फरमाई थी कि सच्ची तलब वालों को अल्लाह ताला गलत रास्ते से भी हिदायत अता फरमा देते हैं और सच्चे और सुच्चे बंदों से मिलवा ही देते हैं। सच्ची तलब वालों को अल्लाह ताला पहुंचा देते हैं, ठीक है ना, ये तो अल्लाह ताला का वादा है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, ठीक है ना, ये अल्लाह ताला का वादा है। लेकिन ये भी याद रखें कि इस वादे का मतलब ये नहीं है कि अब वो जहां भी जाएंगे ना वो जगह सही होगी, नहीं, ठीक है ना, बिकॉज अल्लाह ताला अक्सर जो है ना वो एक लर्निंग कर्व के थ्रू लेकर के जाते, ठीक है ना, फाइनल डेस्टिनेशन सच्ची तलब वाले की वो सही जगह होती है, फाइनल डेस्टिनेशन, ठीक है ना, आखिरी जो जगह पे जाके वो पहुंचता है ना वो सही होती है, लेकिन रास्ते में बहुत से गुमराह मुकामात से अल्लाह ताला लेकर के भी बंदे को जा सकते हैं, उसमें अल्लाह ताला की हिकमत होती है, अल्लाह ताला जो है वो सिखाना चाहते हैं, मुख्तलिफ चीजें दिखाना चाहते हैं, फिर उसके बाद उस बंदे को आखिरी जगह पर सही जगह पर लेकर के आते हैं। उसका मतलब, इस बात को कहने का मकसद ये है कि जिस बंदे की सच्ची तलब हो ना, अब वो ये ना समझे कि मैं जहां पहुंच गया हूँ ऑनलाइन ब्राउजिंग करते करते मैंने फलाने के लेक्चर सुनना शुरू कर दिया, भाई मेरी तो सच्ची तलब थी, तो इसका मतलब ये है कि बस यही सब कुछ सही है, यही सब ठीक है, नहीं, जरूरी नहीं है कि ऐसा ठीक हो जस्ट बिकॉज आपकी सच्ची तलब थी। तो सच्ची तलब काफी नहीं होती, सच्ची तलब तो लाजमी है, लेकिन जो इल्म के असबाब है ना, जो उलमाए कराम है, उनसे पूछना भी लाजमी। फकत सच्ची तलब की बुनियाद पर ना ये सारे जितने गुमराह फिरते हैं ना, ये सब सच्ची तलब वालों, ये ऐसा नहीं हो सकता जी। सभी हर बंदा ही समझता है मेरी सच्ची तलब है, कोई समझेगा कि मेरी तलब सच्ची नहीं, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। बहुत लोग जब इनको इस्लामी ताल्लुक के बारे में पूछो तो वो क्वेश्चन करते हैं कि अगर हम शेख के मशवरे पर ना चलें तो, हम शेख के मशवरे पर ना चलें तो, इसका आंसर प्लीज। देखें इसके लिए ना खवातीन की क्लास में शायद पहले बात नहीं है, लेकिन बंदों में अभी पिछले जुम्मे कोई बात हुई थी। अब इसके लिए ना हमें क्रिकेट की मिसाल देनी पड़ती है। मेरा मतलब आज इसका कोई क्रिकेट के साथ मोहब्बत का ताल्लुक नहीं है, पहले था, ठीक है ना, पहले गलती थी, अल्लाह ताला माफ़ कर दे उसके ऊपर, ठीक है ना, लेकिन जब वो था ताल्लुक तो उस वजह से बहुत सारी चीज़ें सीखनी क्रिकेट वाली। अब तो अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए इस गेम से, हमारी भी और पूरे कौम की भी हिफाजत फरमाए। बहरहाल तो क्रिकेट जो सीख लिया है क्रिकेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें, तो अब वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं भाई, हराम नहीं है उसकी मिसाल को इस्तेमाल करना। तो हम वो वाली मिसाल देते हैं आपके सवाल के जवाब में, ठीक है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ आप नहीं कर रही हैं, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि शेख के साथ ताल्लुक बना लिया, अब जो है वो अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो फिर जो है वो क्या होगा। कुछ लोग तो ये समझते हैं कि शेख की बात नहीं मानेंगे ना तो आसमान से कोई बवाल उतर आएगा उनके ऊपर, है ना, कोई जो है वो आसमान से बिजली आएगी जो इनको जला के भस्म कर देगी, ठीक है ना, भस्म कर देगी वगैरह, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि शेख के साथ जो ताल्लुक इंसान बनाते हैं ना, तो इस ताल्लुक का मकसद ये होता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी जो है वो शरीयत और सुन्नत के मुताबिक गुजारने वाला बन जाए, ठीक है ना, असल में ये मकसद होता है शेख के साथ इस्लाही ताल्लुक बनाने का। तो इस वजह से ना शेख के साथ जो आपका मामला चलता है ना, ये एक ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग, ठीक है ना, ये ट्रेनिंग होती है असल जिंदगी के लिए, ठीक है। तो इस ट्रेनिंग में जो है ना वो जो गलतियां कोताहियां हो जाती है ना, कि शेख की बात नहीं मानी, शेख से जो है वो यानी कुछ गड़बड़ हो गई, ज्यादा अच्छी तरह अदब का मामला नहीं किया वगैरह, तो चूंकि ये ट्रेनिंग ग्राउंड है, तो ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर गलतियां जो होती है ना उनकी बड़ी पकड़ नहीं होती कोई, बल्कि ये ट्रेनिंग के अंदर गलतियां भी छोटी गलतियां, मिसाल तो खैर क्रिकेट की मिसाल देने की जरूरत भी नहीं है, सही बात है, ठीक है ना, कि जैसे कि आप स्कूल कॉलेज के अंदर जब आप किसी यानी एक होता है ईयरली एग्जाम, फाइनल एग्जाम जिसको कहते हैं, ठीक है ना, और एक होता है मॉक एग्जाम, ठीक है ना। मॉक एग्जाम्स जो क्या होते हैं, हमारे यहाँ तो मॉक का लफ्ज पहले ही इस्तेमाल होता था, दूसरी जगहों से हमने सुना। मॉक एग्जाम्स क्या होते हैं, फर्स्ट टर्म एग्जाम कहते हैं पाकिस्तान में, फिर सेकंड टर्म एग्जाम होता है, हाफ ईयरली भी उसको कहते हैं, फिर उसके बाद ना वो होता है क्या कहते हैं, प्रीलिम्स होते हैं, राइट। बोर्ड का जब एग्जाम होता है ना, नाइन्थ ग्रेड में, टेंथ ग्रेड में हमारे यहाँ बोर्ड का एग्जाम होता है, बोर्ड के एग्जाम से पहले प्रीलिम्स होते हैं। वो प्रीलिम्स क्या होते हैं, वो स्कूल बेस्ड एग्जाम होता है, ठीक है ना। अब स्कूल बेस्ड एग्जाम के अंदर क्या हो रहा है, आपकी ट्रेनिंग हो रही है भाई, बिल्कुल माहौल ऐसा बना दिया गया है कि जैसे कि बोर्ड का एग्जाम है, लेकिन इसके अंदर जो आप गलतियां करेंगे तो उन गलतियों के ऊपर आपके जो बुरे मार्क्स आएंगे ना, तो उन बुरे मार्क्स का बोर्ड के ऊपर असर नहीं होगा, बोर्ड के मार्क्स के ऊपर असर नहीं होगा, ठीक है ना। ये जो मार्क्स हैं ये स्कूल वालों ने आपको दे दिए, और स्कूल वालों का तो मकसद ये है, स्कूल वालों का मकसद क्या है कि आप बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयार हो जाए, असल जो रियल एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है, उनके लिए तैयार हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो गलतियां होती भी है ना, तो उनका ज्यादा असर नहीं होता आपके ऊपर, ये सारी की सारी ये गलतियां भी ट्रेनिंग के लिए, ठीक है ना। और जो आपको अच्छाइयां हैं, यानी जो आपने अच्छा परफॉर्म किया है प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर या मॉक एग्जाम्स के अंदर, ये जो आपने अच्छा परफॉर्म किया है ये क्या है, इसके ऊपर आपको मोटिवेशन मिल जाएगी, मोटिवेशन मिल जाएगी, गलतियों के ऊपर आपकी इसलाह कर दी जाएगी, ठीक है ना, ताकि आप असल एग्जाम के अंदर सही परफॉर्म कर सकें, वहां जाकर के गलतियां ना करें। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है ना। क्रिकेट की मिसाल क्या थी, क्रिकेट के अंदर जो है ना एक होता है ना स्टेडियम, वो असल मैच होता है, बड़े पवेलियन के अंदर जो है वो हजारों जो है वो स्पेक्टेटर्स आए हुए होते हैं, और मुल्क भी इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर, और कभी गवर्नमेंट्स भी आजकल इन्वॉल्व होती हैं क्रिकेट के मैच में, ठीक है ना। अब कोई बंदा कहे कि जी मैं तो क्रिकेट के जो है ना, मैं तो जो फाइनल मैच है ना उधर ही जाकर के सब कुछ करूंगा, ठीक है ना, तो क्या होगा वहां पे जाकर के, या तो वो पहली गेम बॉल के ऊपर आउट हो जाएगा, या जो है वो बुरी गंदी बॉल करवाएगा और आगे से जो है वो छक्के पे छक्के लग रहे होंगे उसकी बॉल के ऊपर, तो कितना नुकसान हो जाएगा, पूरी टीम ही हार जाएगी। तो इस वजह से ना ये जो क्रिकेटर्स होते हैं ये नेट प्रैक्टिस करते हैं। नेट प्रैक्टिस क्या होती है कि क्रिकेट के ग्राउंड में ना अभी असल मैच नहीं हो रहा, अभी तो ट्रेनिंग मैचेस चल रहे हैं, तो इसमें ना ये एक नेट लगा देते हैं, ठीक है ना, यानी जाली लगा देते हैं, बड़ी बड़ी सी जाली होती है, उस जाली के अंदर ट्रेनिंग हो रही होती है ना। एक एक बॉलर होता है और दूसरा जो है वो बैट्समैन होता है, एक कोच होता है, बाकी जो होते हैं वो यानी ट्रेनीज होते हैं, और एक ट्रेनर होता है, कोच होता है, ठीक है ना। अब उस नेट प्रैक्टिस के अंदर अगर किसी ने बुरी बॉल करवा दी, ठीक है ना, और उसके ऊपर छक्का पड़ गया, तो वो जो छक्का पड़ गया तो वो छक्का जो है ना वो दूर तक नहीं जाएगा, वो नेट के अंदर ही रुक जाएगा, ठीक है ना। कोई आउट हो गया तो भाई वो नेट प्रैक्टिस हो रही है ना, कोई मैच को थोड़ी आप हार जाएंगे आउट हो जाने के ऊपर, गलत बैटिंग करने के ऊपर, गलत बॉलिंग के ऊपर, है ना, आप कोई मैच तो नहीं लूज कर जाएंगे ना, ये तो सारा का सारा ट्रेनिंग हो रही है, और इस ट्रेनिंग के अंदर जो गलतियां भी हो रही है ना वो विद इन द नेट रह रही है, नेट से बाहर नहीं जा रही। बिल्कुल यही मामला शेख के साथ इस्लाही ताल्लुक का होता है कि इसमें जो आपकी गलतियां भी हो रही होती है ना, इन गलतियों के ऊपर आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं हो रहा होता, बस ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग हो रही होती है आपकी, क्योंकि वो तो ट्रेनर है, वो तो कोच है आपका, वो आपको असल जिंदगी में शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए ट्रेन कर रहा है ना, ठीक है। इस वजह से कोई आसमानी बिजली नहीं आती, कोई अल्लाह का अज़ाब नहीं आ जाता इसके ऊपर, क्योंकि जो सालिक होते हैं, जो 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 मुरीद होते हैं, उनकी नीयत तो सीखने की है, उनकी नीयत तो अल्लाह ताला को राजी करने की है, ठीक है ना। तो अब उनकी गलतियां भी जो होती है ना वो भी ट्रेनिंग के सिलसिले में होती है। हाँ, अगर ऐसा हो कि जो सालिक हैं, जो मुरीद हैं, जो तालिब इल्म हैं, उसकी नीयत ही खराब है, उसकी नीयत ही खराब, उसने शेख के साथ जो इस्लाही ताल्लुक बनाया ना वो तो किसी और ही चक्कर में बनाया है, धोखा देने के लिए बनाया है, दुनिया को धोखा दे रहा है या शेख को धोखा दे रहा है, कुछ और ही मकसद, अपना मकसद पूरा करना चाहता है, इसकी तो नीयत ही खराब है। अब जिस शख्स की ट्रेनिंग के अंदर नीयत खराब हो तो उसकी तो फिर ट्रेनिंग नहीं होती ना, उस बंदे को फिर सजा मिल जाती है, ठीक है ना, उसको जरा बड़ी सजा मिल जाती है, बात समझ में आ रही है, जिसकी नीयत खराब हो। लेकिन जिसकी नीयत अच्छी होती है ना उसकी गलतियां इग्नोर कर दी जाती है, कोई मसला नहीं है, ये तो ट्रेनिंग के अंदर गलती होगी ना तुम्हारी, ठीक है ना भाई। तो दोनों बातों को याद रखें, नीयत सही होना शर्त है, और जिसकी नीयत सही होती अब उसका मसला यानी बहुत ही मिनिमल सा होता है। उन्होंने जो लिखा है इंग्लिश उर्दू दोनों को मिक्स कर दिया है, तो वो ना जुमले को ब्रेक कर देता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से आपका जुमला पढ़ना शुरू करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी के वीक से आई हूँ, मैं दीन की तरफ आई हूँ, दीन को सीखने और समझने को ज़्यादा हो चुका है, कुरान पाक के हवाले से सुनकर सुकून मिला, अब समझ आई कि क्या बेचैनी थी, पहले सुकून नहीं था, कमी महसूस होती थी, जज़ाकअल्लाह खैर वैयाकुम, ठीक है, अल्लाह ताला आपको और आगे बढ़ाए और अपने मुकर्रर बंदियों में आपको सब कुछ शामिल फरमाए, ठीक है। यहाँ पर हम क्लास ख़त्म करते हैं।